como Das Prabhu.
ध्यान देने का बहुत यज्ञ है ये, हम लोग कभी कभी सोचते हैं हम लोग तो भक्त बन गया और बाकी ये सब काम करने क्या जरूरी है। यहाँ पर द्वादश महाजन है, अन्यतम महाजन प्रहलाद महाराज, उनको कहा गया है अभी कौन करें भगवान नृसिंहदेव कहते हैं हे प्रहलाद तुम पिताजी का अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करो। हम लोग क्या करते जब हमारा कोई परिवार में किसी कुछ हो जाता हम लोग फूलो नहीं करते, हम तो भक्त बन गए ना क्या जरूरी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज आदेश दे नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम संसार में हो तो सांसारिक विधि विधान को पालन करो, अगर संन्यास रह गया तो कोई आवश्यक नहीं। ये बात ध्यान देते हैं जब लोग जो भी दीक्षित भक्त बने बन रहे हैं बन गया है बनने का प्रयास करते हैं तो हमारा हम जब तक गृहस्थ जीवन में हूँ तब तक हमारे लिए कर्तव्य बनता है गृहस्थ का जो भी कर्म है हमें सुष्ठु रूप में सुखाई भाव में नियंत्रित करना चाहिए। या प्रहलाद महाराज यही उपदेश दे रहे हैं जब पिताजी का अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करो उसका बाद जब शुद्ध हो जाओगे तभी सिंहासन में आरूढ़ हो, ऐसा नहीं तुम्हारे पिताजी मर गया पिताजी का सम्राज्य शिष्टाचार संपूर्ण रूप में होना चाहिए। तो भक्त में शिष्टाचार अनुशुद्ध भाव में रहते हैं, इस प्रकार स्त्री में मातृत्व रह ही जाता है उसका मातृत्व को चेंज करके स्त्रीत्व तो नहीं होता है, उसी प्रकार भक्तों में शिष्टाचार है ही है, जो भक्त मन जो शिष्टाचार पालन वैसे करता है नहीं करता है उसको क्या कहा जाए। लोग श्लोक ना भक्त समय उत्पात ये लोग केवल श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्म विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पात ये लोग केवल शास्त्र और वहीभूत जो हरि का भक्ति कर रहे हैं और जगत का उत्पाद का कारण जगत जंजाल है, जिस पर कचरा है ना कचरा क्या कर घर में रखता है कोई उस पर कचरा है दूसरा कुछ नहीं है। जो शास्त्र श्रुति स्थिति पुराण छोड़ के जो हरिभक्ति दिखाता है बस करता है वो जगत का कचरा है उसको फेंक देना चाहिए, शास्त्र इस प्रकार कहते हैं। तो यहाँ दोनों जगह में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जो व्यक्ति डिवोटी बन जाता है उसको किसी का ऋणी नहीं होता है। तो मतलब क्या हुआ डिवोटी कितना प्रकार का है, ब्रह्मचारी भी है डिवोटी, गृहस्थ भी डिवोटी है, वानप्रस्थ भी डिवोटी है और संन्यास भी डिवोटी है। ये इसके लिए पालन करना योग्य है गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी को फर्क नहीं पड़ता है, वानप्रस्थ जब तक रहता है तब तक कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है, साथ में पत्नी रहता है, संन्यास और ब्रह्मचारी का कोई कर्म बंधन नहीं होता है, गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए कुछ ना कुछ करना आवश्यक होता है। इसलिए नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को उपदेश दे रहे हैं प्रभुपाद जी कोटेशन भगवद गीता का दिया, श्रीमद भागवत का तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखा है विशिष्टता है इसमें, आप लोग देखोगे हर श्लोक में भगवद गीता का डाला हुआ है, प्रभुपाद जी जितना भी तात्पर्य दिया है प्राय श्लोक में उसका नीचे भगवत गीता का एक श्लोक का कोटेशन अवश्य दिया है। इसका मतलब क्या है कि भगवत गीता वा श्रीमद भागवतम कोई अलग अलग धर्म का कोई पुस्तकता नहीं करते हैं, सब एक ही कहते हैं समझाने के लिए। इसी प्रकार वेदांत सूत्र में अगर जाओगे तो वहां पर रूप सिद्धांत महाराज ने टीका किया है, उनको आदेश दिया गया था भक्ति प्रज्ञान कैसा महाराज वा भक्ति विलास महाराज ये और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा था कि आप लोग जब कभी भी वेदांत सूत्र का टीका रचना करोगे तो हर श्लोक का नीचे उस श्लोक का जो श्रीमद भागवतम में श्लोक है वो अवश्य देना, ये कार्य रूप सिद्धांत महाराज ने किया था। उन्होंने हर श्लोक का तात्पर्य में भागवतम श्लोक उस श्लोक में उस सूत्र में क्या क्या आता है सो लिख के दिया। उसी प्रकार प्रभुपाद जी भगवत गीता का हर श्लोक पर जिस भागवत में जिस जायगा में जिस श्लोक को आते हैं उनको वो सी गालियां देते हैं। जब जल आचरी श्रेष्ठ तत्व देवोत्तर जना सजग प्रमाण वर्तते, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है उनको हमें आचरण करना चाहिए, जो उसमें यज्ञ अयज्ञ देख करके, क्योंकि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है। सृष्टि लीला हम दर्शन पढ़ते हैं, मैं सुनते हैं, जब ब्रह्मा जी जब लड़की का उत्पन्न किया था तो ब्रह्मा अपना लड़की का पीछे भाग गया था, लड़की हरि रूप धारण किया तो ब्रह्मा ने हरि रूप ले लिया, जिसको देख करके ब्रह्मा का पुत्र और मरीचा जी हंस दिया, लेकिन उनका हंसी देख कर उनका पतन हो गया, ब्रह्मा का कुछ नहीं हुआ। अग्नि सब कुछ दहन करने का बावजूद भी अग्नि का केवल उनको अशुद्ध नहीं होता है, वो शुद्धता रहता है। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति भी कुछ अगर शास्त्र बहिर्भूत कर्म करते भी हैं फिर भी वो अनादर योग्य नहीं है, हम ब्रह्मा को देख के हंसना नहीं चाहिए, लेकिन उनका जो कर्म है उसका कर्म का भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो हम भी लड़की का पीछे भागी ये ठीक नहीं, वो श्रेष्ठ गीता कहते हैं ना जब जब देव तरह श्रेष्ठ, तो हम क्यों नहीं कर सकते, नहीं योग्य व्यक्ति जो कर सकते हो हमारे लिए नहीं है, एक उनका आचरण कौन सा जो हमारे लिए योग्य है उसी आचरण हमें करना चाहिए। ब्रह्मा ब्रह्मा ने सृजन करते हमें मकान बनाने का हमारा भारी बढ़ जाता है, नहीं ब्रह्मा के दाम भी कर तुम एक ब्रह्मा सृजन करो ना, नहीं मीरा में फ्लैट में जाओगे 8 लाख रुपया देना पड़ेगा, जब देखते है कि नहीं है तो क्या करोगे, इसलिए वो कर्म हमें आचरण में नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार यही श्लोक में हम लोग को शिक्षा दिया जाता है कि जो कर्म हम लोग सांसारिक जीवन में है उसको अनासक्त भाव से हमें उसका फल पालन करना चाहिए, जिससे लोग हमें देख करके उसका भी आचरण करें। तो क्या बोलेगा वो तो भक्त नहीं है, कुछ नहीं करना हमारे लिए क्या जरूरी, हम भी नहीं करेंगे। ये भगवान ने कभी भी धर्म का अवहरण नहीं किया, धर्म तो सत्कार भगवत प्रणीता, धर्म भगवान का द्वारा प्रणीत किया गया, त्याग किया गया है, इसलिए भगवान इस रूप को कभी भी अवहरणा नहीं करते। इसलिए प्रहलाद महाराज को उस सिंहासन में बैठने के बाद उनको आदेश दिया तुम कोई भी कर्म का पालन करो जिसके द्वारा इस संसार में धर्म पद का परिष्कार मतलब सब कुछ धर्म का अनुसरण करे, नहीं तो धर्म लोप हो जाएगा, ये इसमें श्लोक में दिया गया है। आप सबको मालूम है अगला 28 तारीख से सामने बढ़ता है गौर सुंदर का आविर्भाव तिथि है। गौर सुंदर इस जगत में कृष्ण गौर रूप में आए, क्यों आए, क्या जरूरी था, बोला कोई होगा जिनको उद्धार करने के लिए, कोई अगर ये कहेगा नहीं नहीं वो जुगृति जो है ना ब्रह्मा का एक दिन में 28 चतुर्युग बीतने के बाद जो 28 चतुर्युग का दापर में सिर्फ जो कोरिया था उसमें भगवान आते हैं, ये शास्त्रीय प्रमाण है, लेकिन असल ये कारण क्या है, तो इस कारण का अगर ढूंढना है क्यों कृष्ण गौर हुआ, इसलिए गौर सुंदर रूप में आए, क्यों ये सब काम किया उन्होंने, क्या जरूरी पड़ गया था, ये गौर सुंदर का आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में इनका थोड़ा दिग्दर्शन आपको थोड़ा जान के रखो अच्छा है। जानोगे तो महाप्रभु का जो महाबलान्यता है, कहते हैं नमो महाबलान्य, नमो महाबलान्य, महाबलान्य महाबलान्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम उन्होंने प्रदान किया। कृष्ण प्रेम कौन सा है, कृष्ण प्रेम में तारतम्यता है, कृष्ण में बहुत विशिष्टता है, कृष्ण अपने आप को बहुत रूप में विभाजित करते हैं और बहुत रूप में विभाजित करने बाद हर विभाजित रूप में अनेक पुण्य पार्षद लोग है और हर पार्षद लोग उन वैकुंठ वस्तु को उसी प्रकार सेवा करते हैं जिस प्रकार उस सिद्ध वस्तु का सेवा स्वीकार करना चाहिए। ये विचार प्रणाली अगर हम लोग समझ सकते हैं तो हरि भक्ति क्या वस्तु प्रणाम का दिग्दर्शन हो सकता है। तो जब तक हम लोग ध्यान से श्रवण नहीं करेंगे तब तक ऐसा चीज हमारा शरीर का ऊपर से जाएगा, नीचे से जाने वाला नहीं, इसलिए अच्छी तरह से सुनो और चुप कर धारण करने का प्रयत्न करो, हो सकता है कृष्ण कृपा हो जाए, कुछ जानकारी तो मिलेगा। तो भगवान इस जगत में जब अवतीर्ण होते हैं उनका पंच विभाग होता है, पर गुह वैभव अंतर्जामी अर्चा। हम लोग चार वस्तु दर्शन नहीं कर सकते हैं, हम लास्ट वस्तु जो है अर्चा वो सामने खड़ा है, उनको हम लोग दर्शन कर सकते हैं प्राकृत नेत्रों के द्वारा। इस प्राकृत नेत्रों के द्वारा कोई बोलेगा जगन्नाथ का हाथ नहीं है, बोले तो क्या बड़ा बड़ा हाथ बनाया, ये देखेगा तो ये मार्बल का मूर्ति है ना, हाँ मार्बल का है, ये सब विचार करेगा। अप्राकृत नेत्र के द्वारा भगवान का अप्राकृत स्वरूप का दर्शन होता है, उसमें भगवान का हाथ भी दिखाई देता है, चरण भी दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। हम लोग आप सबको दिखाने के लिए एकादशी दिन दिखा देते हैं, जो भगवान का है, जो हाथ है पाव सब कुछ, ये भगवान का भगवत्ता। ये अर्चा मूर्ति जो है ये भी हमारे लिए दर्शन जी तो कब होता है, जो गुरुदेव कृपा करते हैं, आचार्य लोग अपना प्रचार कार्य सुष्ट भाव में परिचालन करने के लिए जाएगा जाएगा मंदिर बना के रखे हैं। आज उस मंदिर में भगवान का बहुत सारे अवतार है, उस अवतार का कोई भी कोई नया अवतार का शिविर को स्थापन करके रखे हैं, जिसके द्वारा बौद्ध जीव उनको जाकर प्रणाम कर सके, उनसे जाकर कुछ निवेदन कर सके, नहीं तो जब पेड़ करने जाके प्रार्थना करोगे हे भगवान मुझे इस प्रकार दे दो। क्या हम लोग सभी सेवादी है, वैष्णव है हम लोग, हम लोग का वैष्णवता होने के कारण हम लोग भगवान का निर्विशेष नहीं मानते हैं। जो तीन भगवान का दो पहलू है, सविशेष और निर्विशेष, दोनों का भक्ति करोगे तो मुक्ति हो जाओगे, ऐसा नहीं मुक्ति नहीं होगा। निर्विशेषवादी निर्विशेष तत्व का भी अगर भजन किया जाए तो भी संसार से मुक्ति होगा, लेकिन भक्ति नहीं होगा। सविशेष तत्व का भजन करने से भक्ति होता है और अप्राकृत जगत में प्रविष्ट होता है। निर्विशेष तत्व का भजन करने से अप्राकृत जगत मिलता है, लेकिन वो निर्विशेष है। जिस प्रकार अमावस्या का रात्रि अगर हो गांव जाना पड़ेगा यहाँ लाइट बोल दे तो सब कुछ अंधकार है, वो निर्विशेष जाएगा, वो भी इस जगत में नहीं जगह पार है, अप्राकृत जगत पे सबसे नीचे आ जाएगा, वहां पर सब अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देगा। कभी कभी इस प्रकार अमावस्या का रात्रि में तारा का दर्शन होता है, स्टार टूं जलते रहता है, स्टार है वो जलते रहता है, उसी प्रकार उस निर्विशेष धाम में समस्त जीवात्मा जो है ना वो टूं करते रहता है। तो कभी कभी दृष्टि को जलता है, जितना सारे जीव है ना वहां मुक्त होकर रहते हैं, सब वही तार से दुख दुख करते रहता है। ये निर्विशेष धाम है, वो निर्विशेष तत्व का जो भजन करते हैं, जो भजन नहीं साधन साधन भी नहीं होगा, भजन जिसका होता है उसका आकृत होना चाहिए, जो सिद्धि का जा सकती है ज्यादा से ज्यादा नहीं। तो ये अर्चा आचार्य लोग कृपा करके, अर्चा क्या है, आचार्य स्थापन किया बोल के अर्चा हो गई, आचार्य अर्चो आंतरिकार्थ होता अर्चा हो, आचार्य द्वारा स्थापन किया गया जो अर्चा विग्रह है उनको दर्शन करने से होगा। न कोई भी व्यक्ति किधर बोलेगा ना, वो किधर क्या बॉम्बे साइड में जाओगे तो बहुत सारे वाल में विष्णु मूर्ति पेंटिंग क्या हो रहता है, तो बोले ये अर्चा है नहीं, तो उनका दिग्गज है वो शास्त्र में देखा सुना होगा पैसा कमाने में रहता है, एक पेंटिंग कर देगा इतना पैसा मिलेगा, चलो इतना मंगुल गिराव से है ना पेंटर, वो कुछ मूर्ति अगर पेंटिंग करके देता है तो इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, अरे उनका पेंटिंग है इतना कॉस्ट, तो वो अगर भगवान का ही पेंटिंग करे कोई वैल्यू नहीं होता है, ये उनका उद्देश्य पैसा कमाना है। आचार्य जो भगवान का मूर्ति स्थापन का जो मंदिर बनाया उनका धंधा ही था, हम पैसा कमाएंगे, रूपा जी अपना बेटा के लिए पुता के लिए कितना करोड़ रुपया जमा करके दिया, कुछ नहीं करे, सब कुछ हम लोग प्रेरक किया। जो भी व्यक्ति रूपा जी का संस्थान में आएगा संपत्ति उस पर है, इसका मतलब ये उस पर संपत्ति लेकर घर चला जाए, तो कुकुर तुम्हें तो ठाकुर इस भाव से
करते हैं।
भगवान संपत्ति आपका है, कुत्ता जिस प्रकार अपना मालिक का परवेश करता है, परवरिश करता है ना, कोई आगे भूभू उसी प्रकार हम भी कोई बदमाश लोग आया तो हमें भूभू करना चाहिए। प्रतिप जनर आशित नादिव राखी वो गड़े पारे श्लोक। तो दुष्ट व्यक्ति है उसको अंदर आने नहीं दूंगा, ये बोलता है ये अर्चा। इस अर्चा को हम दर्शन कर सकते हैं, वो भी हम लोग सब कोई आ नहीं सकता है भगवान का दर्शन करने के लिए, इसको ने डोरी लगा दिया। बड़ा जो भी व्यक्ति सांडे को आएगा उसको खाना पीना फ्री। तो इसमें दो फायदा, तो कोई बुरा मत समझना, हम किसी क्रिटिसाइज करने इधर बैठा नहीं हूं। इसे फायदा दो क्या होता है, इसको का फायदा क्या होता है, बहुत सारे इसको क्या चाहते हैं कि सब कैसे भी करके भगवान का कथा सुने। तो कैसे भी करके भगवान का कथा सुनेगा तो उसको इस जन्म में ना हो तो अगला जन्म में कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये इसको का फायदा है। और बाकी विषय व्यक्ति क्या फायदा सोचते हैं, पूरा हमारा घर में गैस का खर्चा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं, कम से कम मंदिर जाएंगे प्रसाद तो खाकर आएंगे। तो दूरो व्यक्ति दूरों को क्या सोचता है, इस व्यक्ति में दिहाई भी है, भक्त लोग क्या सोचते हैं तो भगवान का मंदिर जाएंगे कम से कम दर्शन तो करेंगे, छह दिन तो चक्कर में पड़ेगा, एक दिन जाके दर्शन करके आए, ये भक्त दर्शन होता है। विषय व्यक्ति क्या सोचते, आज घर में खाना वाना बनाने सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे, ऊपर लेंगे प्रसाद लेंगे, हो गया, तो सब कुछ बचत हो रहा है। इसको भी सोचते हमारा भी बचत हो रहा है, इसको का बचत क्या है, इतना सारे लोग भगवान का कथा सुनते हैं, भगवान का प्रणाम करते हैं, अनिच्छा की तो वही भगवान का नाम को ग्रहण करता है। हमारे 6 दिन वाला नाम आज का दिन तो झोला गोला में लेके जाऊं, बराबर अनिच्छा की इसको होता है, फिर भी उसका मंगल होता है। इसको उनके रस्सी है गोला में फांस लगाने, सबको झुला देता है जुड़ो। इस विचार के द्वारा संस्था स्थापना किया है, इसका और जाएगा बेनिफिट ही बेनिफिट है, चाहे विषयी हो, भक्त प्राय हो, चाहे भक्त हो, चाहे फुल टाइम डिवोटी हो, सबके लिए फायदा है, किसी के लिए घाटा का वस्तु नहीं है, सब फायदा दायक है। अनिच्छा की तो भी भगवान का प्रसाद अगर पेट में जाता है तो उसका दुष्ट बुद्धि धीरे धीरे काम हो जाता है। विचार को जब आएगा नाम तो मंदिर में गया था, ऐसा काम क्यों करूं, फिर भी इच्छा बस कर रहते हैं, फिर उनका मन में थोड़ा विचार तो आते ही रहता है। तो अर्चा ये पर गुह वैभव अंतर्जानी और अर्चा, इसमें जो अंतर्जानी वस्तु है जिन्हें साक्षात नहीं गाते आदि लीला प्रथम परिचय, जीव संतर्जान को साक्षात्कार नहीं कर सकता है। रूपवादी द्वितीय भक्ति इसमें श्लोक देखते हैं, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य शिव माया है अंधकार। तो जहां कृष्ण वहां माया का अधिकार नहीं है, तो अंतर्जान हमारे हृदय में बैठा हुआ है, तो माया हमारे में नहीं है 110%। चैतन्य जी ने श्लोक का अर्थ क्या निकाला, हुए श्लोक में कहते हैं ईशा ईशा कैसे निकाला जाएगा, इसका अर्थ क्या है, तो जब हम परमात्मा पर अग्रसर होंगे तो भी परमात्मा हमारे को दृष्टिपात करेंगे, नहीं तो परमात्मा कैसे रहेगा, कैसे रहेगा। एक लड़का लड़की प्रेम किया है, दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया, इसका पिट घुमा दिया, उसका पिट घुमा दिया, देखेगा दोनों तरफ नहीं देखेगा, फिर उसका मोबाइल मैसेज में जाएगा, ये जाएगा, फिर मन मुंडा कट्टा होगा, फिर जाके देखेगा, ये परमात्मा है, वो जीव का ऊपर देखने वाला नहीं है, साथ में कोई क्या हुआ है, एक ही जगह में है, ईशा नहीं जगह अलग नहीं, एक ही जगह में है, लेकिन फिर भी परमात्मा जीव को देखने वाला नहीं है। जीव को तभी देखेगा जब जीव परमात्मा पर अग्रसर होंगे, अंतर्जामी यही हाल है, अंतर्जामी कृपा नहीं करेगा, अंतर्जामी कृपा तब करेगा जब अंतर्जामी का कथा हम सुनेंगे, ये जो हरि कथा सुन रहे हैं, अंतर्जामी का हस्त काम सुनेंगे, अंतर्जामी का कथा हम जब सुनेंगे तो ही अंतर्यामी हमारे बुद्धि की बात करेगा। उससे पहले अंतर्यामी चुपचाप निष्क्रिय, आप कुछ भी खराब काम करो वो कुछ नहीं होगा। ये हो गया अंतर्यामी और चामी डिफरेंस। और पर भूव वैभव ये तो बहुत हाई लेवल का ईश्वर दर्शन और दुर्लभ है। वो जब अवतीर्ण होता है उस अवतीर्ण काल में अगर हमारे भी उसमें अवतीर्ण हो जाए तो हमारा दर्शन हो सकता है। फिर भी अगर वो कृपा करे तो जरासंध नहीं देखा था क्या कृष्ण को? देखा था ना, दुर्योधन नहीं देखा था? तो हमारा मनोभाव जब तक जरासंध दुर्योधन रहेगा तो हमारे सामने वो पर्वत तो खड़ा होने के बावजूद भी हम उसको मारेंगे, ये विचार है। इसको मारना पड़ेगा, कौन सा बड़ा होगा? तो ये गुरु का कृपा होना आवश्यक है। ये जो परतत्व वस्तु है, इस परतत्व का तीन भाग है, पर परतर और परतम। पर में इसी को देवता है, भगवान का बहुत सा लीला है, उस लीला का अलग अलग वैशिष्ट्य भी है। भगवान वराह रूप में आए, धोरणी को उठा करके चला गया, ब्रह्मा का नाच नहीं किया, आश्चर्य। मत्स्य आया, कुर्म आया, निशिंग आया, बरा आया, बामो आया, खोरी आया, अधोक को जाया, हग्रीव आया, सब आए। नहीं किसी के लिए अपना विस्तृत तो बना ही तो निशिंग को देव का पर वस्तु में निशिंग देव को क्यों लिया गया, क्या जरूरी था? बाकी ये सब को क्यों नहीं लिया गया है? तो निशिंग देव का लीला का विशिष्टता है, क्या विशिष्टता है इनका? भक्त वत्सलता, ये इनका विशिष्टता है। दूसरा कुछ क्या बरादेव ने इसका पर ब्रह्मा को वत्सल्य तो दिखाया था? इतनी को राका हिरण्य वध किया, भाग गया, क्या वत्सल्य कर दिया? क्या ब्रह्मा को गोद में बैठाया था? दाओ ब्रह्मा हमारा गोद में बैठो। कुम अवतीर्ण हुए समुद्र मंथन के लिए, क्या देवता को बोला दाओ आप सब आओ हमारे पास आओ, मंथन हो गया, बाकी पुष्प का सफरी मत्स्य अवतार इसीलिए वे वस्त्र जो निशिंग देव दिखाया। इसलिए विश्वत्व में निशिंग देव का पर का आविर्भाव कहा जाता है। इनका वस्त्रता क्या है अभी विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार न करो भक्ता विमुच्य न हो। श्रीमद भागवतम श्रवणम विपठन, विचार न करो श्रवण करो। श्रवण करने में तो सही बोला कि राम वाला घर में जाकर बुक खोलो, ये नहीं है जो ब्रह्मा वाक्य को बोल के चला गया। तो उन्होंने तो कहा ना प्रभु जी ने, तो प्रभु जी एकदम 100% आया ठीक है? नहीं, प्रभु जी भी अनर्थ वर्ष को जी है, वो सही बोलता है कि रंग बोलता है घर में जाकर किताब खोलो और विचार करो पढ़ो जाकर के, ना सही है एक्सेप्ट, रंग है एक्सेप्ट करने का जरूरी नहीं है। क्या कितना बड़ा आश्चर्य क्यों ना हो, विचार करना चाहिए, जाकर घर में विचार करो, फिर विपठन पढ़ो, फिर विचार करो उसको, विचार करो ये चित्ते बाबा चमत्कार चैतन्य चंद्रे दया पढ़ाओ विचार, महाप्रभु का दया का विचार करना चाहिए। विचार करने से उसका चमत्कार क्या है वो प्राप्त होता है। नृसिंह देव का जो भक्त वास्तव क्यों लिया गया, इतना अनंत कोटि विष्णु का अवतार है फिर नृसिंह देव का परम से क्यों समर्पण किया गया है? इन गवत्सलता देखो, भगवान नृसिंह देव कहां निकला, कहां से निकला? खंबा से। तो नृसिंह देव बाप कौन हुआ? थोड़ी हुआ है नहीं, क्योंकि जन्म देने से पितृत्व लाभ नहीं होता है, पितृत्व लाभ करने के पुत्र वत्सलता आवश्यक है। ब्रह्मा का नाक से बराह देव नहीं कहा, बराह का बाप ब्रह्मा हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्यों उन्हें वत्सलता मिला है, ये वत्सलता उन्होंने आवश्यक है। नृसिंह देव संभाष निकाल करके हिरण्य को वध किया, आज जितना सारे देवी देवता था सब ने आके हाथ धो के खड़ा हो गया, किसी को ताकत नहीं कुछ बोलने के लिए, सभी इसको मुंह देख रहा है। तो ब्रह्मा जो कहा, ब्रह्मा जी आप कुछ बोलो, ब्रह्मा जी कुछ बोला फर्क नहीं पड़ा, शिव जी तुम भी कुछ बोलो। तो ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र वरुण जितना ऋषि प्रजापति नाग किन्नर अपना जितना लोग था सब कुछ बोलने बल बोल के थक गया। भौतिक जगत जैसे अगर भगवान नृसिंह देव पुत्री प्रेम देखा करके हमें कुछ कृपा करे लक्ष्मी जी का नहीं राम जी का, ये तो ऐसा रूप तो हमको देखा भी नहीं। क्या लक्ष्मी नहीं देखा? हर समय दर्शन करता है, लेकिन उसमें अद्भुत रस का आविर्भाव हुआ था। अद्भुत रस का आविर्भाव होने के कारण लक्ष्मी जी भी अवाक हो गए थे, क्या भयंकर क्या रात उनको सलाह कर रहे हैं। रस कितना वस्तु होता है उसका जानकारी कहाँ को अवश्य, इसको सब पर मीठा होता है, लेकिन जिसका जंडिस हुआ उसके लिए केरला क्या हो तिक्त वासे से दिया दूसरे कारण सहजे सर्वरामिष्ट सर्वलोक के जाने सबको जानता है सबको मीठा है कह तिक्त भाषा दिया दूसरे कारण जिहारों से जो सरकार दोष नाई एते को चै एते को सरमिष्ट है चैतन्य गोसाई चैतन्य हर वक्त सो गया के गया का गलती क्या नहीं हमारा बीमारी हो तो गया को हुआ हो गया ये सब पर का खराब नहीं गया खराब नहीं है हमारा बीमारी खराब। इस प्रकार विचार कर रहे हैं हम लोग निश्चिंग वजन का परतत्व का, तो लक्ष्मी जी अद्भुत रसना आस्वादन करके वो सामने नहीं जा पाए, कहा ब्रह्मा जी करें अभी प्रहलाद हुआ प्रहलाद नहीं भाई चुपचाप जा रहे हैं जा करके ये लोग सब खड़ा होकर स्टॉप किया, किसने धंधावत किया देगा निश्चिंग देव का कोई नहीं ना जाके पक्ष में धंधावत तो मारू नहीं खड़ा होते तो महान है आप ऐसा ऐसा है तो मंदिर आने के बाद धंधावत क्या करो ये हाथ जो करते कोई प्रणाम हो गया तो निश्चिंग देव ऐसा कहता हाँ देखो बहुत लोग तो आते हैं हम तो दर्शन करते रहते हैं आप लोग भी दर्शन करो इसको प्रणाम करके भाग जाता है ये सब जो ब्रह्मा जी के देवता लोग सब ऐसे ही कहते दंडवत कोई नहीं आते है जमीन में दंडवत नहीं किया प्रहलाद महाराज क्या क्या जाके सीधा दंडवत सुन दिया डायरेक्ट भागवत क्या बोलते हैं प्रणाम दुख समस्तु तम नमामि हरि परम प्रणाम करने से दुख नष्ट होता है ये हाथ हिलाने से कुछ होगा नहीं भगवान ने हाथ हिलाया टाटा ये दंडवत का प्रक्रिया है इसलिए हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं ये मंदिर आओगे भगवान का दंडवत प्रणाम करो कि तुम्हारा अंदर जो दुष्ट बुद्धि है भगवान का कृपा से भाग जाएगा जो तुम दुख भोग रहे हो इस संसार में वो दुखों का नाश होगा तो बोला प्रभु जी एक बार प्रणाम करेंगे तो कलाम करोड़पति बन जाएंगे क्या नहीं कुछ मिलने वाला नहीं एक पैसा मिलने वाला नहीं है चाहे आप लोग प्रणाम करो जनाब क्या मिलेगा भौतिक जो दुख है जन्म मृत्यु का जो दुख है इस दुख से छुप कर मिलेगा प्रणाम दुख समस्तु नहीं तो बोला प्रणाम करे दुख नष्ट हो जाएगा चलो भाई कल सुबह हम करोड़पति बन जाएंगे नहीं मिलने वाला है ये सोच के प्रणाम मत क्या करो प्रणाम करो आप जो संसार दुख है वो निवृत्ति हो तो भगवान निशिमदेव को प्रहलाद महाराज जाके प्रणाम किया भगवान निशिमदेव क्या किया अपना जो परम कर्म है वो प्रहलाद का सिर में जो हाथ उन्होंने कभी भी लक्ष्मी जी को सिर में भी नहीं रखा क्या हाथ का पावर सब अशुभ नष्ट हो जाता है प्रहलाद महाराज इतना से अशुभ होता क्या अशुभ होता एक भौतिक जगत में कोई भी देह धारण करता है उसको भी भौतिक शरीर में पड़ना पड़ता है तो प्रहलाद महाराज जो महाभागवत है फिर इस भौतिक जगत में आए थे तो उनको अशुभ था अशुभ था और तो तकलीफ हुआ था ना भगवान इस मंदिर का पर कमल के द्वारा समस्त अशुभ नष्ट कर दिया प्रहलाद महाराज भगवान का स्तुति किया बहुत सुंदर सुंदर स्तुति द्वारा नष्ट किया अपना औचित्यता बोला देखो ये तो ब्रह्मा ब्रह्मा है ब्राह्मण है हम तो क्या है असुरपुर में है हमारा खानदान पूरा बदमाश है सब विष्णु का विष्णु त्रयी है हमारा खानदान फिर भी आप मुझको जो कृपा किया ये ब्रह्मा को भी नहीं किया भगवान विष्णु का प्रसन्न होकर दे उनके गोद में बैठा है देखो इनका वत्सलता क्या है क्या भगवान विष्णु ने हाथ नहीं किया हम किसी को अगर बच्चा का धुने में गिर जाए जमीन में छोटा बच्चा तो माँ बाप क्या करता है कोई हाथ से झाड़ता है नहीं तो साड़ी का कुल्लू झाड़ता है पिताजी गमछा से गमछा झाड़ता है जिया से झाड़ता है क्या कोई माँ बाप अपना पुत्र को जिया से काटता है ऐसा करके एक अरे गाली काटता है गाली आओ बराबर। तो भगवान इसी मतलब किस रूप में आए हैं, उस रूप में। लीला का विचित्र का विचार करो, हमको ये बोला विचार करो ये कितने पापे चमत्कार। निशिंग देव अगर प्रहलाद महाराज को हाथ से ढाले तो भगवान का भगवत्ता हो गया कि नहीं हो गया। तो निशिंग ना करे जिहा से भगवान निशिंग प्रहलाद महाराज को काट रहा है, कहां का धूली लगा, कितना मार पड़ा, किस जगह में क्या है, वो काट के ठीक करे। उसमें ये है, उसमें एक गुण दिया गया है उसका, जिहा उनका एंटीसेप्टिक, क्या बोलता है एंटीसेप्टिक, जिसको काटने वाला डेटॉल बोरोनिल विगो वगैरह लगा था ना, तो क्या एंटीसेप्टिक है, कीटनाशक का इंजेक्शन लेता है, तो पशु का जिहा उनका एंटीसेप्टिक है। कोई पशु का किधर भी घाव आ जाए वो अपना जिहा से सुटाता है। ये पढ़ना चाहिए, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी होता है, काम आता है, सांस पढ़ाता हूँ याद आता है। तो अपना जिहा से खौफ को काटता है, वो खौफ उनको ठीक हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज को इतना जो पिटाई किया गया था, इतना जो तकलीफ दिया गया था, उस जिस जगह में जो तकलीफ होता है निश्चित मतलब उस जगह में जिहा से काटता है। अभी बोलो तो कौन विष्णु तो ऐसा काम किया है, ये वस्त्रता किसने भी दिखाया, आज तक किसने वस्त्रता कोई विष्णु तत्व नहीं दिखाया। इसलिए निश्चिम देव को परो में लिया गया है, इतना सब होने के बावजूद परो में लिया गया है, कुछ मैं प्रहलाद महाराज को चाट के जितना सुख मिलता है उससे प्रहलाद महाराज को ज्यादा सुख मिल रहा है, यह कैसे हो सकता है। बाप का गोद में बेटा अगर बैठा रहे तो बाप खुश हो जाता है, मेरा बेटा उससे ज्यादा खुश होता है, कबीला हो जाता है। तो ऋषि वजह ने जो देखा कि प्रहलाद महाराज हमारे गोद में हम जितना सुख मान लेता है उससे ज्यादा सुख प्रहलाद महाराज को होता है, तो हमको ही बेटा बनना पड़ेगा। शुरुआत कृष्णों का गौर होने के लिए, तब निश्चिम देव को इच्छा हो गया कि हम अभी बेटा वैसे ही बनेंगे, तो बेटा बनेंगे तो माँ बाप को भी चाहिए, इसलिए बेटा नहीं होगा, माँ बाप नहीं तो कौन थाम्बा चादर करेगा क्या, थाम्बा चादर करने वाला नहीं, निश्चिम देव अभी लोगों के देख लिया कि थाम्बा मुझे प्यार करता ही नहीं, अभी थाम्बा को बाप बनाने का नहीं, बाप बनाए कोई आदमी देखते बनाने, ये सोचा निश्चिम देव, ये सोच करके मैंने दशरथ का घर में जान लिया, राम रूप में थम कोई चला तो राम चंद्र भरत बा सिपाही मिया, दशरथ क्या करे देखा होगा रामानंद सागर का पिक्चर देखे होंगे, दशरथ राजा है गिर रहा है, रामचंद्र जा रहा है, दशरथ पीछे पीछे गिर रहा है, राजा का राजत्व तो छोड़ दिया, दशरथ प्रेम में भूल गया, हम राजा है ये दशरथ भूल गया। और भगवान में ऐसा ही है, चलो अभी हम बेटा बन के थोड़ा मजा तो लूटो, बेटा बन के भगवान मजा लूट रहे। प्रहलाद महाराज को देखा, वो देख कर भगवान अपना लोभ को संवरण नहीं कर पाया, आरा के सीधा उतर है, तो भगवान बेटा बन का भी लीला कर रहे हैं। इस लीला में अब इस लीला में बहुत सारे व्यघात आ जाता है, व्यघात क्या आया, क्योंकि लोगों को रीति सदा चले आए प्राण न जाए पर वचन ना जाए, प्रीति तो है लेकिन नीति बड़ा है, रघुपुर में है नीति बड़ा हो गया। अब रघुपुर नाम क्यों हुआ, रामपुर नहीं बोल सकते है क्या, दशरथपुर नहीं बोल सकते है क्या, रामपुर भी नहीं बोलता, दशरथपुर भी नहीं बोलता है, अयोध्यापुर भी नहीं बोलता, रघुपुर बोलता है, क्यों बोलता है रघुपुर, रघु का नाम फेमस क्यों है, इसका विचार है, इसका विचार अगर सुनोगे सुनो तो अच्छा रहेगा, काम में आएगा। तो महाराज रघु का बहुत सारे पत्नियां थी, बहुत सारे पत्नियां थी। एक दिन एक ब्राह्मण आया रघु के पास और कहा, ब्राह्मण को बहुत सारे दान दिया, उनका रघु का सब पत्नी सब लोग आए आकर के देखा तो ब्राह्मण को लोभ हुआ रामदास द्वारा राजा रघु बोला आपको एक पत्नी हमको चाहिए, हमें भी शादी करने की इच्छा होता आप इतना सारा पत्नियां तो आपका है तो पत्नियां अगर आप मुझे दे दोगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो रघु ने अपना आयत्त करके बोला एक तो आप हमारा पूरा पत्नी का भेजा ब्राह्मण को पूरा पत्नी दे दिया और इसको खिलाया गया ना हमारा राजत्व ले लो। तो रघु ने अपना पत्नी और राजत्व उस ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जब ये राजत्व और पत्नी जब दान कर दिया तो ब्राह्मण अपना राजत्व करने लगा। रामचंद्र को क्या हुआ उनका पत्नी सीता देवी रावण ने हरण करा तो रावण को पूरा वंश को मार दिया, इसी रामपुर नाम नहीं दिया रघुपुर नाम दिया, रघुपुर पापा पत्नी को दोनों से मार दिया। तो रघु इतना इसलिए फमास हो गया इसलिए रघुपुर तो रघुपुर नीति सदा चले आए प्राण जाए पर वचन ना जाए पत्नी माँ का दे दिया राजत्व भी दे दिया इसे बहुत सरस करी है इसलिए रघुपुर फमास है। रघुपुर किला बोलते हैं ना रघुपुर किला रामचंद्र की जाए। इस रघुपुर में प्रीति जो कम है नीति बड़ा है कोई कई वर मांगा है हमको क्या चाहिए राम को वनवास और भरत को राज। दशरथ एक राजा है कुछ भी कर सकता है लेकिन क्या किया प्रवेश किया प्रतिज्ञा किया इसलिए हमारा प्रतिज्ञा रहना चाहिए भले ही रामचंद्र वन में चला जाए भले ही राम वन में जाने के बाद हमारा मृत्यु भी क्यों ना हो जाए फिर भी हमारा नीति बड़ा रहना चाहिए। यहाँ प्रीति को है होगी नित्य और प्रीति में चक्कर होगी तो रामकृष्ण रास नहीं है। जब वन में गया जंगल में जाकर के सुरपुर का बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ जल्दी भी रामचंद्र की इच्छा शादी करो लेकिन सीता है बोला नहीं हमारी इस लीला में एक ही पत्नी धर्म व्रत लिया है मैं एक पत्नी सबको दूसरा पत्नी शिकार नहीं कर सकते हैं इसे बहु बंगला लोग जो आनंद है वो राम को मिला नहीं। दंडकारण्य में 60,000 ऋषि था रामचंद्र का रूप देख कर मोहित हो गया तो राम सब आपसे शादी करना चाहते लेकिन प्रकाश कैसे करेंगे कि पुरुष भाव में किसी पुरुष से समलैंगिक हो जाता को निकाल दिया है समलैंगिक रह सकता है ये सब तो नहीं हो सकता है जो हो गया सो हो गया तो रामचंद्र समझ गया बोला तथास्तु आगरा जन्म ऐट करो आगरा जन्म में ही सब मुनि ऋषि दंड कारण जो मुनि ऋषि था सब गोपी बम के नाम दिया तो प्रीति नहीं देखा लेकिन यही जब राम रूप में लीला में पूरा आनंद प्राप्त नहीं हुआ तो वो दुख ही दुख है राम रूप प्यार भी सुख नहीं वन में जा वन में जा करके वहां रावण से झगड़ा करो रावण झगड़ा करने के बाद फिर भी लोग सीता को लेकर आया फिर प्रजा लोग कुछ अपवाद दे दिया फिर सीता को ताक करो फिर सीता चला गया पता नहीं सीता छोड़ के तेरा जैसा राजत्व करना पड़ा पूरा दुख है बड़े से मजा नहीं है दूसरा कुछ ढूंढना पड़ेगा तो राम ने ढूंढने लगा क्या करना चाहिए ठीक है अभी कृष्ण मान निशी को से राम आए राम से कृष्ण है पर में लीला की विशिष्टता है माँ बाप है बादशाह लीला सब कुछ है अभी परोतम जो है इस परोतम में लीला का पूरा वैशिष्ट है। भोसलेव ने प्रतिज्ञा किया था जहाँ हमारा जितना भी संतान होगा कौन सा कोई सौंप देंगे अष्टम गौर को सौंपा था क्या दशरथ ने क्या करता था ले जाओ कौन सा ले जाओ भोसलेव ने क्या किया रात को भागा दिया तो वहां पर नीति बड़ा नहीं हुआ प्रीति बड़ा हुआ इस जगह में नीति छोटा पड़ गया नीति हो गया बड़ा भूषण ने अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिया नहीं अष्टम गौरव हम देंगे नहीं हम सब बहुत होना जरूरी है वहां उनको ले जाकर के नंद गोकुल में रखा और नंद गोकुल में जब रखा उनको तो नंद का नंद घर में आनंद हुई जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की ये सब वहां बिला विलास खुश रहे भागवत में वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी हम सब के लिए कृष्ण बुक रचना करके लिए हैं और उस कृष्ण बुक में रोज प्रभुपाद लीला का आस्वादन कर सकते हो। इस प्रकार लीला विलास जब हुआ जब दर्शन किया सब कोई उस समय उस लीला का दर्शन करके जिसका जिसका प्रेम प्राप्त करना तो किया ही वहां हजारों गोपी 365 करोड़ गोपी थे उस लीला में गोपी लोग भगवान लोग बहुत प्रकार का नाचाया ऐसा कि गांव में गोबर भी लिपा दिया भगवान गोबर लगाओ ভীতি করো, ভগবান ভীতা সব প্রেম অবশ্য প্রেম কাবশীভূত পরতম ভাগ্য না কৃষ্ণ পূজা কারণ পরতম তত্ত্ব হ্যাঁ কৃষ্ণ ইস প্রকার বাৎসল্য হো ঐশ্বর্য কুঝাই নেই বা যেতনা সব লীলা মে অস্ত্র শস্ত্র ধারণ কি উনি উস লীলা মে নন্দ গোকুল মে লীলা কি উনি কবি অস্ত্র ধারণ নেই কি সব হাল ঈশ্বর ঠাকুর ইসো ঘুমায়া ইসো এতে আট পশু প্রবাদ জ্ঞান এই কিসি কে তিধস নেই রায় না বা খড়বা সুদর্শন কবি নেই পায় সবটা সব আপনার হাতে কারবার কর দিয়ে গৌর লীলা মে কে বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ হাত ভি ইউজ নেই কৃষ্ণ লীলা মে হাত ইউজ দিয়া তাহলে গৌর লীলা মে হাত ইউজ নেই যাও নাই এরে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কার না মারিল হরি নামে তারিল সবা আরে বলতি না হরি বল হরি বল আরে হরি বল হরি বল হরি বল কে মারাই সুমনে জবাব কি উদ্ধার কর দিয়া এই লো কৃষ্ণ কা লালসা এই কৃষ্ণ কথা শুনতে শুনতে পরিকৃত মহারাজ কবি লোভ হো গিয়া নন্দ কিমত করদ ব্রহ্ম যশোদা তো মহাভাগা অপরিশ্বাম হরি সূর্য গোস্বামী প্রশ্ন করিলা হে মহামুনি বা হে সূর্য গোস্বামী আপ কৃপা কে তো বাতাই নন্দ কিমত করদ ব্রহ্ম নন্দ মহারাজ ক্যা কিয়া থা আর যশোদা মে সে কোন সা কর্ম কিয়া থা জিসকে দ্বারা ভগবান অখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক জিনকা উদর মে পৌর ব্রহ্মাণ্ড ও মা যশোদা কা এক স্তর ভি পান নাই করবে এ ভর গিয়া মুখ সে দুধ নিকালনা স্তন পান করে স্তন দাল দুধ কে রাখল কথা তো মনে করে স্তন দৃশ্যম যা স্তন পান কে দ্বারা জিস হৃদয় মে জিস সুক্ষ্ম মে পুরো ব্রহ্মাণ্ড সমাবিষ্ট হে ও মা যশোদ কা বাচ্চা ভরা স্তন পান করে এ লোক ইস লোক কা বহুত সারে স্তনি হে বহুত জায়গা বহুত ভসমান ভাগবত মে বর্ণন কিয়া গিয়া হে ব্রহ্মা গিয়া তো উনকা ভী লোভ হুয়া শিবজি গিয়া তো উনকা ভী লোভ হুয়া লক্ষ্মী জি ভী তো লোভ হুয়া তপস্যা করনে বৈঠ গিয়া বিল্লো ব্রহ্মাণ হে না এ সব দেখ করকে जो लोग इस लोक का परिपूर्ण करने के लिए कृष्ण का विलोक हो गया ये राधा को जो राधा रानी जो हमें इतना प्रेम करता है और हम जो राधा रानी को प्रेम करता है हम देखते हैं हमारे से राधा रानी ज्यादा खुशी होता है तो राधा प्रेम में क्या है लोग हमको क्या बोलते हैं मदन मोहन लेकिन जब राधा रानी को हम देखते हैं तो हमारा दिमाग चकरा जाता है लोग हमारा नाम लेता है हम राधा नाम लेते हैं जब हम को देख के वशीभूत है मेरे राधा को देख के वशीभूत हूं तो सब जो हमारा उल्टा ही लग रहा है एक भी सही नहीं है सब की परेशान तो राधा प्रेम में ऐसा क्या वस्तु है जिसके द्वारा हम उसको आश्रमण कर सके तो राधा ने कृष्ण को अभिशाप दे दिया बोलो मारी को पर जन्म में तुम हो राधा कृष्ण कृष्ण बोले बांसुरी बजाओ তুমি হইলে তুমি না হাম পেকাল আগে ভক্তকে বংশ বাজাঙ্গা আর তুম মুজা পিছে পিছে আওগে মন আমার তো আগা জন্মে রাধা হো তো কৃষ্ণ মে রাধা হো আর কোথা কৃষ্ণ কোথা যাও মুরলি বদন গোর সুন্দর হি গানে লাগা কাহা যাও কাহা পাও কাহা মুরলি বদন দুসরা কুছ নেই একি এই করনে গিয়া যাহা পর কৃষ্ণ কা গন্ধ আ রহা হে গোর সুন্দর পাগল হো যাতা রাধা প্রেম প্রদান করতে কৃষ্ণ কাজ সাধন করতে জ্যাদা মহত্ব নেই মানে জ্যাদা মেহনত নেই হরে কৃষ্ণ বলো কৃষ্ণ মন প্রাপ্ত হয়ে যাবো উচ্চারণ করো कृष्ण को प्राप्त हो जाए। यही लोग यही लाला साहब यही लाला साहब का वशी पुत्र होकर के कृष्ण ने राधा रूप लेकर के गौर सुंदर बन गया। और गौर सुंदर बन क्या किया, आप हमार सब व्यक्ति को कृष्ण ब्रह्म में मार करा दिया। ये गौर सुंदर का वैशिष्ट है। इसलिए गौर सुंदर कृष्ण क्यों गौर हुआ था ये बिचार करना भूख तो लाग में भूख टाइम डाल करना टाइम हमारे पास भी नहीं, आप लोग पास है तो हमारे पास तो नहीं है। इसलिए हम कथा का समापन यहीं पर कर रहे हैं, बहुत सारे काम करना पड़ेगा। चलो जो जो सुना वही सही है, जो नहीं सुना वही सही है। हरे कृष्ण। भंसा का पुत्र वशिष्ठ वासुदेव सुविधा अलंकार बने को वैष्णवी बोल रहे हैं।